अध्याय 18 मल्लयुद्ध कुश्ती की रात। ये अध्याय उत्पत्ति 32 और 33 पर आधारित है। यद्यपि याकूब ईश्वरीय निर्देश का पालन करते हुए पदान राम को छोड़ चुका था, फिर भी 20 वर्ष पूर्व जिस मार्ग में वो पलायक के रूप में चला था उस पर वापस जाने में उसे संदेह हो रहा था। अपने पिता को धोखा देने का पाप हमेशा उसके सामने आ जाता था। उसे ज्ञात था कि उसका दीर्घकालीन प्रवास उसके पाप का प्रत्यक्ष परिणाम था। इन बातों को वो रात दिन सोचता रहता था और एक अभियोगात्मक अंतरात्मा द्वारा उसका तिरस्कार उसकी यात्रा को दुखद बना रहा था। जैसे ही दूर से उसके जन्मस्थान के पहाड़ दिखाई दिए, कुलपिता का हृदय विचलित हो गया। पिछली बातें स्पष्ट रूप से उसके सामने आ खड़ी हुईं। पाप के स्मरण के साथ ही उसे अपने प्रति परमेश्वर की दयालुता का विचार आया और उसे ईश्वरीय सहायता और मार्गदर्शन का विचार भी आया। यात्रा के अंतिम पड़ाव में एसाव का विचार अपने साथ कई विपत्तियों का पूर्वाभास लेकर आया। याकूब के भाग जाने के पश्चात एसाव स्वयं को अपने पिता की धन संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी मानता था। याकूब के लौट कर आने का समाचार उसमें ये डर उत्पन्न कर देता कि वो अपनी मीरास का दावा करने के लिए आ रहा था। एसाव यदि चाहता तो अपने भाई को अधिक हानि पहुंचाने में सक्षम था और वो न केवल बदले की इच्छाओं से हिंसक हो सकता था, बल्कि उस संपत्ति पर बाधा रहित अधिकार सुरक्षित करने के कारण भी, क्योंकि वो उसे अभी तक अपनी समझता था। परमेश्वर ने फिर से याकूब को ईश्वरीय सुरक्षा का प्रतीक प्रदान किया। जब उसने गीलाद पर्वत से दक्षिण की ओर यात्रा की, स्वर्गदूतों के दो समूह उसे आगे और पीछे घेरे हुए प्रतीत हुए और उसकी टोली के साथ मानो उनकी सुरक्षा हेतु चलते रहे। याकूब ने बेथेल में देखे स्वप्न दर्शन को स्मरण किया और उसके हृदय का बोझ कम हुआ, जब उसने इस प्रमाण को देखा कि जिन पवित्र संदेश वाहकों ने उसके कनान से भागने के समय उसे आशा और साहस प्रदान किया था, वही उसके लौटने में उसके रक्षक होंगे। और उसने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा, दो दल या टोली। लेकिन फिर भी याकूब को लगा कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। इस कारण उसने अपने भाई के लिए मैत्रीपूर्ण अभिवादन लिए संदेश वाहकों को भेजा। उसने उन्हें एसाव को संबोधित करने वाले उचित शब्दों का निर्देश दिया। दोनों भाइयों के जन्म से पूर्व ये भविष्यवाणी की गई थी कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा, और इस डर से कि इस बात के कारण करवाहट उत्पन्न हो सकती थी, याकूब ने अपने दासों से कहा कि वो उन्हें एसाव मेरे स्वामी के पास भेज रहा है, और एसाव के सामने वे उसे तेरा दास याकूब कहकर बुलाएं। इस डर को दूर करने के लिए कि वो एक असहाय पलायक के रूप में अपने पैतृक धन पर दावा करने के लिए आ रहा था, याकूब ने ध्यानपूर्वक अपने संदेश में कहलवाया, मेरे पास गाय बैल, गधे, भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। लेकिन याकूब के दूतों ने लौटकर समाचार दिया कि एसाव 400 आदमियों के साथ आ रहा था और मैत्रीपूर्ण संदेश का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह निश्चय ही प्रतिशोध लेने को आ रहा था। डेरे में डर फैल गया। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा। वह पीछे नहीं जा सकता था और आगे बढ़ने में डर रहा था। उसका निहत्था व निस्सहाय दल प्रतिरोधी मुठभेड़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और यह सोचकर उसने अपने दल को दो भागों में बांट दिया कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाए। उसने अपने पशुधन में से एसाव के लिए बहुत से उपहार भेजे और साथ ही मैत्रीपूर्ण संदेश भी भेजा। अपने भाई के साथ धोखा करने की क्षतिपूर्ति के लिए और चुनौतीपूर्ण खतरे को टालने के लिए जो भी उसके बस में था उसने किया, और फिर दीन होकर पश्चाताप के साथ ईश्वरीय सुरक्षा के लिए विनती की। तूने मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यर्दन नदी के पार उतर आया और अब मेरे दो दल हो गए हैं, तेरे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। अब तक वे यब्बोक नदी के पास पहुंच गए थे। रात होने पर याकूब ने अपने परिवार को नदी के पार भेज दिया और स्वयं अकेला पीछे रह गया। उसने रात प्रार्थना में बिताने का निश्चय किया और परमेश्वर के साथ अकेले रहना पसंद किया। परमेश्वर एसाव के हृदय को विनम्र कर सकता था, कुलपिता की आशा उसी में थी। उस निर्जन सुनसान अरक्षित पहाड़ी इलाके में, जो चारों ओर हत्यारों के छुपने का स्थान व जंगली जानवरों का घर था, याकूब व्यथित मन लेकर पृथ्वी पर दंडवत हुआ। मध्य रात्रि का समय था। जिनके लिए उसे जीवन से प्रेम था वे उससे दूर थे और मृत्यु और संकट उन पर मंडरा रहे थे। सबसे कष्टदायक विचार ये था कि उसके पाप के कारण यह विपत्ति उन निर्दोषों पर आ पड़ी थी। आंसुओं के साथ ऊंचे स्वर में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। अचानक एक शक्तिशाली हाथ उस पर पड़ा। उसने सोचा कि कोई शत्रु उसके प्राण लेना चाहता था और वो हमलावर की पकड़ से स्वयं को छुड़ाने का प्रयत्न करता रहा। अंधकार में दोनों स्वामित्व के लिए संघर्ष करते रहे। एक भी शब्द नहीं बोला गया, लेकिन याकूब ने अपना पूरा बल लगा दिया और क्षणभर के लिए भी प्रयत्न करना नहीं छोड़ा। जब वो अपने प्राणों के लिए लड़ रहा था, अपराध का आभास उसकी अंतरात्मा पर हावी हो रहा था। उसके पाप उसके सामने आ जाते थे और उसे परमेश्वर से दूर कर देते थे। लेकिन इस भयानक परम संकट में भी वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं भूला और उसने पूरे हृदय से उससे दया की भीख मांगी। पौ फटने तक मल्लयुद्ध चलता रहा और तब उस अपरिचित ने याकूब की जांघ पर अंगुली रखी और वो उसी समय लंगड़ा हो गया। कुलपिता ने अब आक्रमणकारी के चरित्र को पहचाना। वो समझ गया कि वो स्वर्गीय संदेशवाहक के साथ संघर्षरत था और इसी कारण उसका लगभग अतिमानवीय प्रयत्न विजयी नहीं हुआ। वो मसीह था, वाचा का स्वर्गदूत, जो याकूब को प्रकट हुआ था। कुलपिता अब विकलांग हो चुका था और अत्यंत पीड़ा सहन कर रहा था, लेकिन वो अपनी पकड़ को ढीला नहीं छोड़ रहा था। पश्चाताप से भरा व हताश वो स्वर्गदूत से लिपटा रहा। वो रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की, होशे 12 आयत 4, और आशीर्वाद के लिए अनुरोध किया। उसे आश्वासन चाहिए था कि उसके पाप क्षमा किए गए। शारीरिक पीड़ा उसको उसके हृदय से विचलित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका निश्चय आखिर तक दृढ़ होता गया और उसका विश्वास भी और बढ़ता गया। स्वर्गदूत ने स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने को है। लेकिन याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना देगा तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। यदि ये घृष्ट घमंडपूर्ण आत्मविश्वास होता तो याकूब का उसी समय विनाश हो जाता। लेकिन उसने अपनी अयोग्यता का अंगीकार करने का आश्वासन दिया था कि वो अभी भी प्रतिज्ञा पूरी करने वाले परमेश्वर की विश्वसनीयता में विश्वास रखता था। याकूब दूत से लड़ा और जीत भी गया, होशे 12 आयत 4। दीनता, पश्चाताप और आत्मसमर्पण के द्वारा ये पापी गलतियां करने वाला नश्वर व्यक्ति स्वर्ग के गौरव से जीत गया। उसने अपनी कौपती हुई पकड़ को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से बांध दिया था और अथाह प्रेम का हृदय पापी की विनती को अस्वीकार न कर सका। वह विकल्प जो धोखे से जन्मसिद्ध अधिकार की प्राप्ति हेतु याकूब के पाप का कारण था, अब उसके सामने स्पष्ट रूप से सामने आया। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास न करके स्वयं के प्रयत्नों से वो करना चाहा जो परमेश्वर अपने समयानुसार व अपने तरीके से संपन्न करना चाहता था। उसके क्षमा हो जाने के प्रमाण के तौर पर उसका नाम याकूब से बदलकर इज़राइल रखा गया। याकूब उसके पाप का स्मरण पत्र था व इज़राइल उसकी विजय का स्मारक। स्वर्गदूत ने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब को वो आशीर्वाद मिल गया था जिसके लिए उसकी आत्मा इच्छुक थी। छीनने वाले और धोखा देने वाले के तौर पर जो पाप किया था वो क्षमा हो गया था। उसके जीवन का संकटकाल समाप्त हो गया। संदेह, उलझन और पछतावे ने उसके अस्तित्व में कड़वाहट भर दी थी, पर अब सब कुछ बदल गया था। लेकिन परमेश्वर के साथ समझौते से जो शांति मिली वो सुखदाई थी। अब याकूब को अपने भाई से मिलने का डर नहीं था। परमेश्वर, जिसने उसका पाप क्षमा किया था, उसके पश्चाताप और उसकी दीनता को स्वीकार करने के लिए एसाव के हृदय को प्रभावित कर सकता था। जब याकूब स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध कर रहा था, एसाव के पास दूसरा स्वर्गीय संदेशवाहक भेजा गया। एसाव ने अपने भाई को देखा, जो 20 वर्षों से अपने पिता के घर से प्रवास में था। उसने उसके स्वर्गवासी मां के लिए दुख को देखा। उसने उसे परमेश्वर के दल से घिरा हुआ देखा। एसाव ने इस स्वप्न की चर्चा अपने सिपाहियों से की और उन्हें याकूब को हानि न पहुंचाने का निर्देश दिया, क्योंकि उसके पिता का परमेश्वर उसके साथ था। दोनों पक्ष, मरुघर का प्रधान अपने योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए और याकूब अपनी पत्नियों, बच्चों, चरवाहों व दासियों और उनके पीछे भेड़ बकरियों व गाय बैलों की लंबी पक्तियों के साथ अंत में आमने सामने आए। अपनी लाठी का सहारा लिए कुलपिता सिपाहियों की टोली से मिलने आगे जाता है। हाल ही में हुए संघर्ष से वह विकलांग व क्षीण हो गया था और हर कदम पर रुकते हुए वह धीमी गति से दर्द सहते हुए चल रहा था, लेकिन उसकी मुखाकृति प्रसन्नता व शांति से कांतिमान थी। विकलांग पीड़ित को देखते ही एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। इस दृश्य को देखकर एसाव के अभद्र सिपाही भी द्रवित हो उठे। हालांकि एसाव ने उन्हें उसके स्वप्न के बारे में बताया था, फिर भी अपने सरदार में आए परिवर्तन को वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुलपिता की दुर्बलता को देखा, लेकिन वे ये नहीं भांप पाए कि उसकी निर्बलता को ही उसकी प्रबलता बना दिया गया था। यब्बोक नदी के किनारे यातनापूर्ण रात में, जब विनाश उसके सामने प्रतीत हो रहा था, याकूब को ज्ञात कराया गया कि मनुष्य द्वारा दी गई सहायता कितनी व्यर्थ है और मानवीय योग्यता पर विश्वास करना कितना निराधार है। उसकी एकमात्र सहायता उसी से आनी थी जिसके विरुद्ध उसने महापाप किया था। निस्सहाय और अयोग्य, उसने पश्चातापी के प्रति परमेश्वर की करुणा की प्रतिज्ञा की विनती की। वह प्रतिज्ञा ही उसके लिए आश्वासन था कि परमेश्वर उसे क्षमा करेगा और स्वीकार करेगा। आकाश और पृथ्वी भले ही न रहें, उसका वचन कभी नहीं टलेगा, और इसी के द्वारा वह उस भयानक संघर्ष में सफल रहा। उस रात के मल्लयुद्ध और वेदना का याकूब का अनुभव उस परीक्षा का प्रतीक है जो परमेश्वर के लोगों पर मसीह के दूसरे आगमन के पूर्व आएगी। यिर्मयाह नबी ने पवित्र स्वप्न दर्शन में इस समय को देखते हुए कहा, थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति का नहीं, भय ही का है। सबके मुख पीले पड़ गए हैं। हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा। उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यिर्मयाह 30 आयत 5-7। जब मसीह मनुष्य के पक्ष में मध्यस्थ के तौर पर अपना कार्य छोड़ देगा, तब संकट का समय प्रारंभ होगा। शुद्ध करने के लिए पश्चतापी लहना होगा। जब यीशु परमेश्वर के सामने से मनुष्य के मध्यस्थ का पद छोड़ देता है, तब ये पवित्र घोषणा की जाती है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और पवित्र है वह पवित्र बना रहे। प्रकाशित वाक्य 22 आयत 11। फिर नियमित करने वाला परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी से हटा लिया जाता है। जैसे याकूब को अपने क्रोधित भाई से मृत्यु का डर था, वैसे ही परमेश्वर के लोगों को उनसे खतरा होगा जो उनका विनाश करना चाहते हैं। और जैसे एसाव के हाथों से बचने के लिए कुल पिता ने रात भर मल्लयुद्ध किया, वैसे ही धर्मी रात दिन उनके चारों ओर के शत्रुओं से बचाए जाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। उसके पाप के कारण याकूब को नष्ट करने के अधिकार का दावा करते हुए शैतान ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने याकूब को आरोपित किया। उसने एसाव को याकूब पर चढ़ाई करने के लिए उत्तेजित किया और कुल पिता के मल्लयुद्ध की लंबी रात में शैतान ने उसमें अपराध बोध की भावना को हावी करने का प्रयत्न किया, ताकि वो निराश होकर परमेश्वर से स्वयं को दूर कर लें। जब अपनी व्यथा में याकूब ने स्वर्गदूत को पकड़कर आंसुओं के साथ विनती की, स्वर्गीय संदेशवाहक ने उसके विश्वास को परखने के लिए उसे उसके पाप का स्मरण कराया और उससे छूटकर भागने की चेष्टा की। लेकिन याकूब पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने सीखा था कि परमेश्वर दयालु है और उसने परमेश्वर की उसी दया का वास्ता दिया। उसने अपने पाप के लिए किए गए पश्चाताप की ओर संकेत किया और छुटकारे की विनती की। अपने जीवन का अवलोकन कर वो लगभग निराश हो गया, लेकिन उसने स्वर्गदूत को पकड़े रखा और सच्चे वेदनापूर्ण विलाप के साथ विनती की, जब तक कि वो सफल नहीं हुआ।
बुराई की शक्तियों के साथ अंतिम संघर्ष में परमेश्वर के लोगों का भी यही अनुभव रहेगा। परमेश्वर उनके विश्वास को, उनकी तपस्या को, उन्हें छुटकारा दिलाने की उसकी योग्यता में विश्वास को परखेगा। शैतान उन्हें इस विचार से डराने की चेष्टा करेगा कि उनकी परिस्थिति निराशाजनक है, यह कि पाप इतने गंभीर है कि उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। उन्हें अपनी कमियों का आभास होगा और जब वे अपने जीवन की समीक्षा करेंगे तो उनकी आशा डूब जाएगी। लेकिन परमेश्वर की करुणा की महानता व अपने व्यक्तिगत सच्चे पश्चाताप का स्मरण कर वे निस्सहाय पश्चतापी पापियों के लिए मसीह के माध्यम से की गई उसकी प्रतिज्ञाओं की विनती करेंगे। उनकी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर न मिलने के कारण उनका विश्वास विफल न होगा। वह परमेश्वर की सामर्थ्य को थामे रहेंगे, जैसे याकूब स्वर्गदूत को पकड़े रहा, और उनकी आत्मा सदा कहेगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे आशीर्वाद न दो।
यदि याकूब ने पहले धोखे से जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्ति के पाप का प्रायश्चित नहीं किया होता तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी होती और उसके जीवन की रक्षा न की होती। इसी प्रकार संकट के समय यदि परमेश्वर के लोगों में वेदना व भय से उत्पीड़न के दौरान उनके सामने लाए जाने वाले अस्वीकृत पाप होंगे तो वे पराजित होंगे। निराशा उनके विश्वास को समाप्त कर देगी और उनमें छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से विनती करने का विश्वास नहीं होगा। लेकिन यदि उनमें अपनी अयोग्यता का आभास है तो उनमें प्रदर्शित करने के लिए कोई गुप्त पाप नहीं होंगे। मसीह के मेल कराने वाले लहू से उनके पाप मिटा दिए जाएंगे और वे उन्हें याद न करेंगे। शैतान कई लोगों में यह विश्वास उत्पन्न करता है कि परमेश्वर जीवन के महत्वहीन कार्यों में अनिष्ठा को अनदेखा कर देगा, लेकिन याकूब के प्रति अपने व्यवहार से परमेश्वर बताता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बुराई को सहन या स्वीकार नहीं करेगा। जो भी अपने पापों को अनदेखा करने या छुपाने की चेष्टा करते हैं और उन्हें स्वर्ग की पुस्तकों में अस्वीकृत व बिना क्षमा हुए रहने देते हैं, वे शैतान द्वारा पराजित होंगे। जितना उत्तम उनका व्यवसाय, जितना अधिक सम्मानित उनका पद, उतना ही परमेश्वर की दृष्टि में क्षतिकर उनका मार्ग होता है और उतनी ही निश्चित महान शत्रु की विजय हो जाती है।
फिर भी याकूब का इतिहास एक आश्वासन है कि परमेश्वर उनको नहीं छोड़ेगा जो धोखे से पाप में पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चा प्रायश्चित कर उसके पास लौट आते हैं। वो आत्मसमर्पण और सहज रूप से विश्वासी निष्ठा ही थी जिसके द्वारा याकूब ने वो प्राप्त किया जो वो अपनी शक्ति के बल पर संघर्ष करके पाने में विफल रहा। परमेश्वर ने इस तरह अपने दास को सिखाया कि केवल ईश्वरीय सामर्थ और अनुग्रह ही उसे वो आशीर्वाद दे सकता था जिसकी उसे तीव्र अभिलाषा थी। ऐसा ही अंत समय में रहने वालों के साथ होगा। जब वे खतरों से घिर जाएं और उनकी आत्मा निराश हो जाए तो उन्हें केवल प्रायश्चित की योग्यता पर निर्भर होना चाहिए। हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। हमारी सारी असहाय अयोग्यता में हमें जीवित उद्धारकर्ता की योग्यता में विश्वास रखना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी नष्ट नहीं होगा। हमारे अवगुणों की लंबी सूची अनंत परमेश्वर की आंखों के सामने है। सूची पूरी हो चुकी है। हमारे कोई भी अपराध छूटे नहीं हैं। लेकिन जिसने प्राचीन काल के अपने दासों की पुकार को सुना था, वो विश्वास की प्रार्थना को सुनेगा और अपराधों को क्षमा करेगा। उसने वचन दिया है और वो अपने वचन को पूरा करेगा।
याकूब ने जीत प्राप्त की क्योंकि वह आग्रही और दृढ़ संकल्पी था। उसका अनुभव आग्रहपूर्ण प्रार्थना की शक्ति की साक्षी देता है। वह समय अब है कि हम प्रबल प्रार्थना और दृढ़ विश्वास के सबक को याद करें। परमेश्वर की कलीसिया या व्यक्तिगत मसीही की सर्वोत्तम विजय या उपलब्धियां वह नहीं हैं जो गुण या विद्या से प्राप्त होती हैं। ये उपलब्धियां वे हैं जो परमेश्वर के साथ श्रोता कक्ष में प्राप्त की जाती हैं, जब सच्चा व अत्याधिक विश्वास सामर्थ का शक्तिशाली हाथ पकड़ लेता है। जो लोग अपने प्रत्येक पाप को त्यागने को और परमेश्वर की आशीष को गंभीरतापूर्वक पाने को सहमत नहीं हैं, वे उसे नहीं पाएंगे। लेकिन जो याकूब की तरह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करेंगे और वे उसी की तरह सच्चे और आग्रहपूर्ण होंगे, तो वह उसी की तरह सफल होंगे। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लूका 18 आयत 7-8।